हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रात के लगभग 2 बज रहे थे। आंशी डिनर के बाद अपने घर के गार्डन में बैठी थी। पिछले 1 महीने से वो घर पर ही थी। अमन ने उसे आराम करने के लिए 1 महीने की छुट्टी दी थी और इस टाइम में वो पूरी तरह ठीक भी हो चुकी थी। आंशी गार्डन में बैठे अमन के बारे में सोच रही थी कि तभी उसके पास उसका कॉल आया। तुम बहुत लंबा जीने वाले हो, उसने खुद से कहा और अमन का कॉल पिक किया। अमन उस समय ऑफिस में ही था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी, उसने पूछा। मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ कि मुझे ठीक हुए पूरे 10 दिन हो गए, लेकिन तुम हो कि मुझे ऑफिस आने ही नहीं दे रहे। मैं घर बैठी बोर हो जाती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है, तो कल ऑफिस आ जाना, अमन ने जवाब दिया। उसके हाँ कहते ही आंशी के चेहरे पर चमक थी। उसने खुश होकर कहा, कल सैटरडे है तो हाफ डे रहने वाला है, फिर संडे की छुट्टी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं मंडे से ही ऑफिस आऊँ। अब आप ऑफिस ना आने के बहाने बना रही हैं मिस जिंदल। थोड़ी देर पहले तो तुम घर पर बैठकर बोर हो रही थी और अब तुम्हें 2 दिन की छुट्टी और चाहिए। आर यू श्योर कि तुम ठीक हो गई हो, अमन ने हंसकर पूछा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम इतना क्यों जिद कर रहे हो, तो कल मैं पक्का ऑफिस आऊँगी। मेरी जगह वहाँ सेफ तो है ना सर, या आपकी गर्लफ्रेंड ने फिर से मेरी जगह ले ली? आंशी की बात सुनकर अमन चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला लवी फिर से ऑफिस आने लगी है? मिस्टर सिंह, मेरी उनसे बात होती रहती है। इस संडे वो मुझसे मिलने के लिए घर आए थे, तब उन्होंने मुझे बताया। हाँ, लवी ने अपना काम वापस संभाल लिया है। वो पिछले 20 दिनों से ऑफिस आ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी जॉब को कोई खतरा नहीं होगा। अब से तुम मिस्टर सिंह को असिस्ट करोगी। जैसे ही अमन ने मिस्टर सिंह को असिस्ट करने की बात कही, आंशी का चेहरा उतर गया। क्या मुझे मेरी वही पोजीशन वापस नहीं मिल सकती, उसने बुझी आवाज में पूछा। तुम ऑफिस आओ, फिर इस बारे में बात करते हैं। मेरे फोन पर किसी और का कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ, अमन ने आंशी को टालकर कॉल कट कर दिया। आई एम सो सॉरी, पर तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। इस ऑफिस में काम करोगी तो तुम मेरी नज़रों के सामने भी रहोगी और मैं तुम्हें बाकी खतरों से बचा भी पाऊंगा। और साथ ही लवी तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, उसके लिए ज़रूरी है कि तुम मिस्टर सिंह के साथ काम करो। यही हम सब के लिए सही रहेगा। अमन ने काफ़ी सोच समझकर आंशी के लिए सब डिसाइड किया था। वही पहले आंशी ऑफिस जाने के नाम से काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी, अब जब उसे मिस्टर सिंह के साथ काम करने की बात पता चली तो उसका एक्साइटमेंट पल में गायब हो गया। तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारी वो चुड़ैल गर्लफ्रेंड वापस आ गई है। कितने बुरे हो तुम, मुझे ऐसे देखते हो जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत खास हूँ, बहुत मायने रखती हूँ, और अब जब मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो तब खुद से दूर कर रहे हो, आंशी ने गुस्से में कहा। उसके पापा मिस्टर जिंदल उससे बात करने के लिए उसके पास आए थे। उन्होंने आंशी की कुछ आखिरी बातें सुन ली थीं। वो आंशी के पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोले, कौन तुम्हें खुद से दूर कर रहा है? कोई नहीं पापा, आंशी ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। आप यहाँ गार्डन में कुछ बात करनी थी क्या? हाँ, मिस्टर जिंदल ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा। मेरी बात नई नहीं है, मैं तुम्हें फिर से वही कहने आया हूँ जो हर बार कहता हूँ। तुमने अपने लिए कोई अच्छा कॉलेज डिसाइड किया या इस बार भी ये काम मुझे ही करना होगा? पिछले दिनों जो भी हुआ उसके बाद इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला, और पिछले दिनों जो भी हुआ उसके बाद मैं अपने डिसीजन को लेकर और भी श्योर हो गया हूँ। मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर मैंने स्विट्जरलैंड में एक कॉलेज देखा है। वहाँ तुम्हारी एडमिशन की फॉर्मैलिटी लगभग पूरी होने वाली है। तुम जाकर अपने ऑफिस में बात कराना और ये जॉब छोड़ देना। अगर किसी तरह का कंपेंसेशन भरना है तो उसकी चिंता मत करो, वो मैं देख लूँगा। इस बार मिस्टर जिंदल ने आंशी से कुछ नहीं पूछा और पहले ही वो इसकी पूरी तैयारी करके आए थे। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, आंशी ने इतना ही कहा और उठकर अंदर जाने लगी। अंदर जाते हुए उसने बड़बड़ा कर कहा, अब तो तुम्हें और खुशी मिल जाएगी ना, जब मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी। यहाँ से जाने के बाद उस विधिक से भी पीछे छूट जाएगा और तुमसे भी। आंशी काफी गुस्से में थी और जाकर सोने की कोशिश करने लगी। उसे बार बार अमन का ही ख्याल आ रहा था, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। आई हेट यू सो मच। मैं क्यों करूं मिस्टर सिंह के साथ काम जब मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ? ये तो अच्छा बहाना भी मिल गया जॉब छोड़ने का, ऊपर से पापा ने भी एडमिशन करा दिया। अब तुम रहना अपनी उस गर्लफ्रेंड और सीक्रेट एजेंट वाली जॉब के साथ खुश। आंशी ने बेडसाइड कर रखी कुछ दवाइयाँ ली और लाइट बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। दवाइयाँ लेने के बाद वो थोड़ी देर में नींद की आगोश में थी। अंडरस्कोर अंडरस्कोर विधिक ने अपने घर पर मेलिसा और रोबिन को डिनर पर इनवाइट किया था। वो उन दोनों से ऐसे बात कर रहा था मानो उसे पता हो उस मेले में बॉम्ब किसने प्लांट किया था। उसकी बातें सुनकर मेलिसा ने हैरानी से कहा, लगता है तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ मेंटल ट्रीटमेंट की भी जरूरत है। अभी तक शौक में हो? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो डार्लिंग, रोबिन ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मैं एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट को जानता हूँ, तुम कहो तो कल ही उसे तुम्हारे पास भेज देता हूँ, तुम्हारी कुछ हेल्प हो सके तो, उसने विधिक से पूछा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कन्फर्म करने की कोशिश कर रहा था कि तुम दोनों मेरे पीछे से चोरी छुपे कुछ कर रहे हो या नहीं। तुम दोनों अपने टेस्ट में पास हो गए, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो अब डिनर करते हैं, विधिक अपनी व्हीलचेयर खिसकाता हुआ डाइनिंग टेबल के पास लेकर आया। मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? मेलिसा ने पूछा। नहीं, मैं कर लूंगा, पिछले एक महीने में मुझे इसकी आदत हो गई है, विधिक ने जैसे ही कहा रोबिन फटाक से बोला। कहीं इतनी भी आदत मत डाल लेना कि उम्र भर इसी पर बैठे रहो, याद है ना हमें काम भी करना है। उसके ऐसा कहने पर मेलिसा ने उसे तिरछी निगाहों से देखा। मेरे दो मेहमान और आने वाले हैं, विधिक ने बताया। 9 बज चुके हैं, ये डिनर के लिए परफेक्ट टाइम होता है, क्या हमें अब उनके आने का वेट करना होगा? मेलिसा ने पूछा। अरे नहीं, मैंने डिनर पर सिर्फ तुम दोनों को इन्वाइट किया है, वो तो ड्रिंक के लिए आ रहे हैं। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और खाना शुरू करते हैं। फिर उसने मेलिसा की तरफ देखकर कहा, मेलिसा तुमने कहा था ना कि तुम कुछ हेल्प कर सकती हो, क्या ऐसा करो हमें खाना सर्व कर दो। शिवांगी होती तो वो कर लेती, लेकिन वो बाहर गई है, आई होप यू डोंट माइंड। विधिक उनके सामने सामान्य बर्ताव करने लगा। नो नो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, मेलिसा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और उन्हें खाना सर्व करने लगी। वो लोग डिनर करते हुए इधर उधर की बातें कर रहे थे। विधिक के बर्ताव से रोबिन और मेलिसा भी आश्वस्त हो चुके थे कि ये एक नॉर्मल डिनर पार्टी थी जिसके लिए उसने उन्हें इन्वाइट किया था। डिनर हो जाने के बाद विधिक के कहने पर मेलिसा ने शैंपेन खोली, उसने उन तीनों के ग्लास में शैंपेन डाली। रोबिन ने एक सिप लेकर कहा, खाना सच में लाजवाब था, अब पता चला तुम्हारी होटल की इतनी तारीफ क्यों होती है। नेक्स्ट टाइम हमें जब भी बाहर अच्छा खाना खाने का मन करेगा तो हम यहाँ वापस जरूर आएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, मेलिसा ने भी उसकी बात पर सहमति जताई। अच्छा तुमने कहा था तुम्हारे मेहमान आने वाले हैं, वो अब तक आए क्यों नहीं?
बोला तो इसी टाइम का था, लगता है उन्हें आने में और टाइम लगेगा। विधिक उनसे बात कर ही रहा था तभी उस फ्लोर की डोरबेल बजी। लगता है वो आ गए हैं, मैं दरवाज़ा खोलकर आती हूँ। मेलिसा दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ने को हुई तभी विधिक ने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक है। वो अपनी व्हीलचेयर खिसकाकर अलमारी के पास लगे बटन के पास गया और वहीं से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलने के बाद दो आदमी अंदर दाखिल हुए, ये वही थे जिन्हें मेलिसा ने उस दिन फेयर में बॉम्ब प्लांट करने का सारा काम दिया था। उन्होंने ही फिर पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया था। उन्हें देखते ही मेलिसा का चेहरा डर से पीला पड़ गया। रॉबिन अपने भावों को सामान्य रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। यही है मेरे मेहमान, विधिक ने कहा, तुम दोनों के चेहरों को देखकर ये क्यों लग रहा है कि तुम इन दोनों को पहले से जानते हो? ये तो वही है ना जिन्होंने उस मेले में बॉम्ब्स प्लांट किए थे, इन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मेलिसा ने पूछा। मैंने ही इनकी जमानत करवाई है, बदले में इन्होंने वादा किया है कि ये मुझे उन लोगों के नाम बताएंगे जिन्होंने इतना हायर किया था। विधिक की बात सुनकर मेलिसा गुस्से में चिल्लाई, तुम ऐसे लोगों पर यकीन कर भी कैसे सकते हो, इनका कोई दिन ईमान नहीं होता, ये आज किसी के होते हैं कल किसी और के, क्या भरोसा है, जो ये कहेंगे वो सच ही होगा। जरूर सच ही होने वाला है, मैंने इन्हें वादा किया है कि मैं इन्हें उन लोगों से बचा लूंगा, विधिक ने जवाब दिया। हाँ तुम्हारे वादे भी कौन से सच्चे होते हैं, सबको पता है कि तुम्हारे साथ गलत बात करने वाले को तुम कभी नहीं बख्शते, पहले उन्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर अपने पाली में कर लेते हो और फिर उन्हें बेदर्दी से मार देते हो। तुम भी भरोसे के काबिल नहीं हो विधिक राणा, बातों ही बातों में रॉबिन उन दोनों आदमियों को सतर्क करने की कोशिश कर रहा था। नहीं इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वैसे रॉबिन कुछ देर पहले क्या कहा था तुमने, मेरे होटल में बने खाने का कोई जवाब नहीं, वो इसलिए क्योंकि मेरी बनाई हर एक चीज खास होती है, चाहे वो होटल हो या फिर मेरा प्लान किया हुआ वो उस दिन वाला फेयर। मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। मेलिसा ने अपना पर्स उठाया और रॉबिन का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने को हुई। विधिक ने तेजी दिखाते हुए अपनी गन उठाई और हवा में फायर की। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा। गोली की आवाज़ सुनकर रॉबिन और मेलिसा के कदम वहीं रुक गए। मेलिसा उसकी तरफ मुड़ी और गुस्से में कहा, तुम लोगों को अपने घर बुलाकर उनका शिकार करते हो। बहुत ही बुजदिल हो तुम विधिक राणा, जो घर आए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करते हो। जैसा भी हूँ, तुम लोगों से तो 100 गुना अच्छा हूँ। तुम लोगों की तरह थोड़ी हूँ जो किसी के पीठ पीछे वार करे, विधिक ने गुस्से में कहा। तो क्या गलत कर दिया हमने? ये हमारा काम है और तुम भी इसमें मिले हुए हो। तुम्हें चोट लग गई तो इतना दर्द हो रहा है। हर बार जब तुम बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हो तो सोचो कितने मासूम लोगों को चोट लगती होगी। तब तुम्हारे अंदर का इंसान जानवर कैसे बन जाता है, रॉबिन ने कहा। उनकी कही एक एक बात विधिक के गुस्से को बढ़ा रही थी। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य घूम रहा था जब उस दिन ब्लास्ट हुआ था और आंशी उसके पास बेहोश पड़ी थी। मैं खुद पर लगी 100 चोटें भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर उस पर लगी एक भी नहीं, विधिक ने गुस्से में जवाब दिया और रॉबिन के बाएं पैर की तरफ गोली मारी। वो गोली से उसके पैर को छूकर गई थी, लेकिन फिर भी उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो चिल्लाकर नीचे गिर गया। उसके खून निकलने लगा। पागल तो नहीं हो गए हो तुम, मेलिसा रॉबिन को संभालने लगी। मेरे लेफ्ट लेग में इतनी ही चोट लगी थी जितनी किसी गोली के छूकर जाने से लगती है, लेकिन मेरे राइट पैर में अभी भी बहुत दर्द होता है। डॉक्टर ने कहा मैं अभी 1-2 महीने और अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। जैसे ही विधिक की बात खत्म हुई, उसने रॉबिन के राइट पैर पर गोली चला दी। उसका निशाना बिल्कुल सटीक था। प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, इसलिए तुम्हारा भी पूरा इंतजाम किया गया है, विधिक ने क्रूरता के साथ कहा। फिर वो उन दोनों आदमियों की तरफ देखकर बोला, इन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा देना। कोई ज्यादा पूछे तो बोल देना कि तुम दोनों ने गोली चलाई है, और हाँ, जितने पैसे उन्होंने दिए हैं उनके 3 गुना पैसे दूंगा। बोलते हुए विधिक ने गन उन आदमियों की तरफ फेंकी। उनमें से एक आदमी ने उसे कैच कर लिया। नीचे एम्बुलेंस खड़ी है, और हाँ, आगे से गलती से भी मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश मत करना, वरना दोनों का वो हाल करूंगा कि चील कोई भी नहीं खाएंगे। विधिक अपनी व्हीलचेयर खिसकाते हुए अंदर ले जा रहा था, तो वहीं मेलिसा उन दोनों आदमियों की मदद से रॉबिन को हॉस्पिटल लेकर जाने लगी। वहाँ जो भी हुआ वो सब सुनकर लावण्या और दिव्याना भी सकते में थीं। अब उन्हें समझ आ गया था कि विधिक ने दिव्याना को बाहर क्यों भेजा था। वहीं पहली बार उनकी आंखों के सामने विधिक का इतना क्रूर चेहरा आया था। 4000 पाठ पढ़कर समीक्षा जरूर करिएगा।